बात करना चाहते हो तो समीउल्लाह तुम भी बोलो। लेकिन वो कहते हैं कि मैं इन तारीखी हकायक के बाद क्या बोल सकता था। वो तो खैर हो हमारे एक दूसरे साथी जमाल नक्रोमा की, ये अफ्रीकी एक रहनुमा है नक्रोमा उनके बेटे। उन्होंने कहा कि भाई हम तो पाकिस्तान के बड़े ममनून हैं कि पाकिस्तान ने अफ्रीकी आज़ादी की तहरीकों में शानदार किरदार अदा किया। साहब अभी बात ख़त्म होने को थी कि हनानुल वजीर मारूफ फलस्तीनी मुजाहिद अबू जहाद की बेटी बोल उठी, क्या मैं आपको याद दिलाऊं कि अम्मान की गलियों में 20,000 फलस्तीनियों का कत्लेआम किसकी सरबराही में हुआ, किस फौज के दस्ते ने कामयाब फलस्तीनी बगावत को कुचल डाला जो कि इसराइल के खिलाफ एक खत्मी जंग में तकरीबन कामयाबी हासिल कर चुकी थी। तारीख में जिसे ब्लैक सितंबर का नाम दिया गया, हनानुल वजीर एक खूबसूरत खुशगफ्तार फलस्तीनी साथी थी। उन्होंने कहा मेरे पाकिस्तानी दोस्त अगर आपको याद नहीं तो मैं याद कराऊं, इस कामयाब फलस्तीनी बगावत को पाकिस्तान के ब्रिगेडियर जियाउल हक बाद में जनरल जिया की क्यादत में कुचला गया था। फिर फलस्तीनियों को कभी कोई मिलिट्री बेस मुयस्सर ही ना हो सकी। अम्मान की गलियां फलस्तीनियों के खून से रंग गईं और फलस्तीनी लबनान हिजरत करने पर मजबूर हुए। और फिर 1982 में इसराइलियों ने यासर अरफात और जाश हब्बाश समेत फलस्तीनियों को लबनान भी छोड़ने पर मजबूर कर दिया और यूं फलस्तीनियों की जद्दोजहद आजादी बर्बाद होकर रह गई। इन फलस्तीनियों के लिए जमीन तंग कर दी गई जो उर्दन से बचकर लबनान पहुंचे थे। और जब इन 14,000 फलस्तीनियों को लबनान से निकाला गया तो इसके बाद जंग आजादी फलस्तीन वैसी उठान हासिल ही न कर पाई जिसकी बर्बादी का आगाज ब्लैक सितंबर में हुआ था। और कभी कभी तो दिल चाहा कि मेरे सामने जो हकायक रखे जा रहे हैं काश उन्हें सुनने से पहले मुझे जमीन ही निकल जाती। ये ख्याल था तहरीर लिखने वाले डॉक्टर समीउल्लाह मलिक का। कहते हैं कि पिछले दिनों उन्होंने भी एक सान फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस थी और आपको पता है कोविड की वजह से मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस जो हैं जूम के ऊपर हैं। तो डॉक्टर साहब लिखते हैं कि पिछले दिनों फोन पर सैन फ्रांसिस्को में मुनाक़िद स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फोरम जैसे आलमी सतह पर मुतबर सिंपोजियम में कश्मीर में भारत की फौज कशी के खिलाफ बोल रहा था। तो साहब उसी सिंपोजियम में एक खातून नसरीन मेरे सामने आके खड़ी हो गई और मुझे कहने लगी, सिंपोजियम में जहां और शुरका भी मौजूद थे, मुझे कहने लगी शराब अब ये बताओ तुमने बंगाल में किया क्या। इसके बाद नसरीन ने गालियां देते हुए कहा काश 1971 का बदला लेने के काबिल होती। मेरे पास डॉक्टर साहब कहते हैं कि अल्फाज ना थे ना ही दलायल। मैंने सबके सामने कहा मुझे इस बर्ताव पर शर्मिंदगी है जिसकी वजह से मेरी बंगाली बहन नसरीन के अंदर जायज इंतकाम का जज्बा भड़क रहा है और अपनी बहन नसरीन की वसातत से मैं अपनी कौम की तरफ से इस अलमनाक किरदार के हवाले से मुआफी का ख्वास्तकार हूं। लेकिन क्या ही बेहतर होता, क्या ही बेहतर होता कि अगर मेरी बहन यानी जो बंगाली बहन नसरीन थी ये भी वजाहत कर दें कि हिंदुस्तान से ब्राह्मण की साजिश का आप आलाकार क्यों बन गए। और उन्होंने कहा कि मैं कोई गुमान नहीं कर रहा, मुख्तलिफ ऑथर्स चाहे वो बांग्लादेश में हैं चाहे वो हिंदुस्तान में हैं वो इस बात का इकरार कर चुके हैं कि ये साजिश थी। किस तरह से बंगाली खेल गए थे दूसरों के हाथ में। मगर समीउल्लाह मलिक साहब अपने और अपनी कौम की जानिब से लिखते हैं कि मैंने अपना सर नदामत के साथ झुका दिया तब मेरा एहसास यकीन में बदल गया कि हम अपनी तारीख के इसी तरह वारिस हैं। बहुत खूबसूरत तहरीर मुझे लगी। बिल्कुल साहब हम कर क्या रहे हैं। और मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मैं पाकिस्तान से 26 साल 27 साल पहले यहाँ आ गई थी। आज जब मैं कनाडा में भी सूरत हाल देखती हूँ आप यकीन कीजिए आपो तापी पड़ी हुई, मादर पिदर आजाद कपड़ों से बाहर। Isn't it sad? It is. हम समझते हैं کہ پیسے کے لیے، حصول کے لیے، کاروبار کے حصول کے لیے اگر میں اپنا ضمیر بھی بیچ دوں گا تو وہ بھی ناکافی ہوگا. دس از ویری کامن، دس از ویری کامن. جیسے دیر واز اے ٹائم کہ عورت ہمارے گھر کی عزت ہوا کرتی ہوتی تھی، مگر آج آئی ڈونٹ نو. ناصر شاہ صاحب میرے ساتھ ہیں، میں اردو کی خبروں کے سیگمنٹ میں انٹر ہو گئی ہوں. آئی ایم سو سوری ٹو شازیہ جی اینڈ ماجد جمال صاحب. بہرحال ناصر شاہ صاحب شاہ کنسلٹنٹ کے ساتھ وابستہ ہیں. آج تو شاہ جی کو دفتر میں آنا چاہیے تھا، پر شاہ جی بھی سپر مین ہے، آئے ہی نہیں. حالانکہ آج تو مجھے کام تھا شاہ جی سے. شاہ جی گڈ مارننگ، راتی تسی بہت چنگے لگ رہے سی، تاڈا ہیئر سٹائل بہت اچھا لگ رہا سی. 20 سال دا تجربہ تاڈا مارگیجز اینڈ لونز دے وچ اور بزنس لائن آف کریڈٹس دے وچ. میں تانوں انٹرپٹ نہیں کراں گی کیونکہ سارا ٹائم کی دقت ہے. آپ کا بہت شکریہ فار یور آن گوئنگ سپورٹ. تو میں تو بلکہ رات سوچ رہی تھی میں بھی آپ کو ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ دوں گی، اوپر سونے کے پانی سے لکھوا کے. شاہ جی بہت شکریہ فار یور سپورٹ. جی شاہ جی
بہت شکریہ ونس اگین. واجی ریڈیو پوائنٹ سننے والوں سے سر سرکار السلام علیکم. جیسے آپ کو پتا ہے پچھلے 22 سالوں سے میں مارگیجز کر رہا ہوں، لونز کر رہا ہوں، اور آلویز آن ایئر کہتا ہوں بھائی پہلے گھومو پھرو چیک کرو اور آخر میں مجھے کال کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا بھی میں میک شیور کرنا چاہ رہا ہوں جب آپ میرے پاس پہنچیں آپ کی تسلی ہونی چاہیے جو میں آپ کو آفر کرنے جا رہا ہوں یا جو بتانے جا رہا ہوں وہ بالکل 100% صحیح ہے. اس میں کوئی 1% بھی آپ کو ڈاؤٹ نہ لگے اور آپ کو خوشی ہونی چاہیے. اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں پہلے چیک کر کے صرف میرا نمبر نوٹ کریں تاکہ آپ کے پاس میرا نمبر آلویز ہینڈی ہونا چاہیے کبھی بھی ضرورت پڑے. پہلے اپنی تسلی کر کے پھر مجھے ایک بار لازمی کال کرنی ہے. کوئی بھی چیز فائنل کرنے سے پہلے ایک بار پوچھنا ہے بھائی مجھے یہ فلاں جگہ سے یہ فلاں آفر ہو رہی ہے. کوئی بھی آپ ریٹرن پروف لے آتے ہیں میں اس گارنٹی سے اس جو بھی انٹرسٹ ریٹ آپ لائیں گے اس کو بیٹ کر دوں گا. یہی ہماری ایکسپرٹی ہے. اور انٹرسٹ ریٹ صرف نہیں، انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ ساتھ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ بھی میں میک شیور کرتا ہوں وہ بیسٹ ہوں، اور تاکہ آپ جب بھی آئیں آپ کی تسلی ہونی چاہیے. یہ جو انٹرسٹ ریٹ تو ہم جو کہتے ہیں وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ ساتھ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہم آپ کو آفر کریں وہ بیسٹ ہے. نمبر بڑا ایزی ہے، 6477419000. اور اس کے علاوہ آج کا جو ریٹ ہم آفر کرنے جا رہے ہیں آپ بھی سن کے حیران ہوں گی بھاجی، 1.39 ویریبل فکس. 5 سال کی مورگیج چاہیے تو آپ ہمیں کال کریں 6477419000. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کمرشل مورگیج چاہیے، بے شک آپ نے پلازا لینا ہے، پلازے میں ہوٹل لینا ہے، آپ نے گیس اسٹیشن لینا ہے، کسی طرح کا آپ نے بزنس کمرشل مورگیج لینی ہے، تو ایون بینکٹ ہال اور موٹل وغیرہ کی بھی مورگیج ہو رہی ہے آج کل. اگر آپ نے بینکٹ ہال، موٹل لینا، ہوٹل لینا ہے تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں کال کریں 6477419000. اور آج کا جو کمرشل مارگیج کا ریٹ ہم آفر کرنے جا رہے ہیں 2.99 کو آپ کو کمرشل مارگیج مل سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی سیکنڈ مارگیج چاہیے، بے شک آپ کا کریڈٹ خراب ہو گیا ہے، بینکرپسی ہو گئی ہے، پروپوزل ہو گیا ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. 24 آورز میں اپ ٹو 1 ملین مل سکتا ہے
شاہ جی.
24 آورز میں اگر اپ ٹو 1 ملین چاہیے، جی بھاجی گھبرانا آپ نے بھی نہیں ہے.
میں بالکل نہیں گھبراتی، مگر آج میں اس لیے گھبرا رہی ہوں ٹائم کم ہے، تو ہماری نیوز کا سیگمنٹ بھی ابھی چل رہا ہے. آپ ایک دفعہ اپنا نمبر دیجئے گا اور میں بلکہ آپ کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں، میں ایک پراپرٹی کو اناؤنس کر رہی ہوں. دیٹ از 125 ایکرز کی پراپرٹی ہے. آپ سوچئے گا 403 کے اوپر جو پراپرٹی ہے، آپ تو بڑے بڑے بل بورڈ لگا گئی، یو کین میک ہیک اے لاٹ آف منی. اٹس اے گریٹ اپرچونٹی. تقریباً 125 ایکڑ دی پراپرٹی ہے برانڈ دے شہر دے وچ. And if you are money-minded, you can have your boards on that property and you can mint money on that.
Bajit, if price kya maang rahe hain? Main aaj hi sauda karta hoon aapko.
Sir ji, 4.5 million. Ye 125 acre hain, jisme se 82 acre ke upar kashtkari ho rahi hai. Isme 3 bedroom ka ghar hai, shed hai, barn hai. Around 100 acres jo hai workable hai. Aur agar aapne mortgage karni hai, Shah ji se aap baat kar sakte hain. And Shah ji, یقین کیجئے گا کہ یہ 403 کو فیس کرتا ہے، اس کا تقریباً 1000 فیٹ 403 کو فیس کرتا ہے. دوسری سائڈ پہ ہائی وے 2 اس کو لگتی ہے. اٹس اے گریٹ اپرچونٹی اور یہ برانڈ کا شہر ہے. برانڈ میں اس وقت بلڈرز کے بنے ہوئے گھر آپ خرید بھی رہے ہیں. دس از رائٹ آن 403. دیر از اے لاٹ مور پوٹینشیل ان دس پراپرٹی. مارگیج شاہ جی کر کے دیں گے. آپ مجھے بھی کال کر لیجیے گا، میرا نمبر 416 8986245। शाह जी आप इस तरह की जो जमीनें हैं उनकी भी मॉर्गेज करा देते हैं ना?
जी बिल्कुल, मॉर्गेज बहुत आराम से करवाते हैं जी।
शाह जी अपना नंबर एक दफा दे दीजिएगा ताकि फिर
7741 9000। और लास्ट मिनट क्लोजिंग भाजी, अगर कभी 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 किसी को मसला बन जाए, लास्ट मिनट क्लोजिंग बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, लेस देन वन डे में आपकी।
बस ठीक है शाह जी, बस जी नंबर आपका चला गया 7419000। नासिर शाह साहब
हर मर्ज की दुआ, फ्रेंचाइज बिजनेस लेना है वो भी करवा देंगे।
बहुत शुक्रिया शाह जी। 4167419000 6477419000। थैंक यू शाह जी,
थैंक यू जी।
लेकर के चलती हूँ आपको न्यूज की तरफ। फटाफट तुझे कॉल कर दिया करो फिर शाह जी, फोन तो चले जाया करेंगे, आप आगे अगला सेगमेंट कर लिया करेंगे। जी शाह जी, जी
जी साहब, वेलकम बैक अगेन। एंड 4:10 और 11 मिनट हो गए जी, 4:11 हो गए और ले चलते हैं शाजा मलिक की जानिब। जी फरमाइए,
कैसे हैं मजे? ठीक
है अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा अच्छा जी, बस हम जो है आज ज्यादा मुस्करियों का टाइम नहीं है, टाइम बड़ा कम रह गया है। सिर्फ हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, www लगाएं या ना लगाएं, eawaz.com, बस eawaz.com पे जाएंगे आपको बड़ी प्यारी स्टोरियां नजर आएंगी। एक सिर्फ हम कमर्शियल आपको बताना चाहते हैं और वो ये है कि 4-bedroom डिटैच्ड हाउस विद 5 वॉशरूम्स कैलेडन के साउथ फील्ड एरिया में आ रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 3,300 square feet है और बेसमेंट इसकी फिनिश्ड है, थाउजेंड्स ऑफ अपग्रेड्स हैं, 9 feet सीलिंग है के अंदर और 4-5 कार पार्क बाहर हैं, 2 जो हैं गैराज के अंदर हैं और जो है ये कंसर्टेड है ऑल ड्राइववे एंड बैकयार्ड। तो इसके लिए टीम सज्जन को फोन करें, टीम सज्जन को फोन करें एट 4163203322। तो माजिद भाई, आज जो हमारे पास स्टोरियां हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं और जरा थोड़ी सी फिर कल की तरह जरा थोड़ी सी कहानियां भी हैं हमारे पास हैं जी। तो ऐसे है अच्छा जी, आज आपको बताइए, अब ये जो ओमिक्रॉन आ गया है तो उसके लिए बहुत सारे कंसर्न्स आ गए हैं। तो आज ट्रूडो साहब जो हैं वो अपने कॉकस की मीटिंग के लिए जा रहे थे तो वहां पे रिपोर्टरों ने रोक लिया प्राइम मिनिस्टर बेचारे मासूम जनती ट्रूडो को। तो उनसे पूछा जी कि ये जो है आप ये थर्ड बूस्टर शॉट्स जो हैं कब देने शुरू करेंगे और कब रिकमेंडेशन देंगे। तो ट्रूडो साहब ने कहा जी रिकमेंडेशन जो है नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन इम्यूनाइजेशन जो है वो देती है, ये जो हमारी नाची है वो देती है। तो वो जैसे ही देखते वो कहते हैं जी उसका टीकों का कोई मसला नहीं है, यानी कि वैक्सीन्स जो हैं उनका कोई भी मसला नहीं है, वो जैसे ही हमें कहेंगे कि जी थर्ड बूस्टर शॉट्स आपने देनी है वैसे ही इमीडिएटली जो है हम उसको देनी शुरू कर देंगे। हमारे पास बेशुमार है और इस साल 2022 में अब जो आने वाला है इसमें हमें और बहुत सारी डोजेज आ रही हैं, तो नो प्रॉब्लम। अच्छा इसके साथ साथ जी आपके जो फेवरेट है एरन ओटूल साहब, उन्होंने आज फिर से आपके दो तीन पर्सनैलिटी बड़े फेवरेट है ना, ये हैं जेसन कैनी और जो है हमारे मौलाना साहब, तो वो हाँ तो ये एक जो है आपके एरन ओटूल साहब, इन्होंने आज अपने कॉकस को कहा है कि भाई ये जो बिल आ रहा है, ये जो दी जा रही है कन्वर्जन थेरेपी, इसके ऊपर जो बिल पहले तो आपको पता ही है कि वो पेपर के ऊपर ही रह गया था, इलेक्शंस आ गए थे और सेनेट में पास नहीं हुआ था। अब लिबरल गवर्नमेंट इसके ऊपर बड़ा जोरों शोर से काम कर रही है, तो इन्होंने एक दफा फिर से कहा है एरन ओटूल साहब ने अपने कॉकस में लोगों को कि भाई आप भी जरा इसके ऊपर गौर करो थोड़ा सा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अननेसेसरली लोगों को जो है बच्चों को और ऐसे लोगों को जिनको ज्यादा समझ नहीं है उसको फोर्स करते हैं कभी कभी कि जी आप कन्वर्ट कराएं, तो इसके अंदर जो है वो सेक्सुअलिटी के और उसके बड़ा जो है वो आ जाते हैं। तो वो कहते हैं जी कि ये इनके ऊपर आप काम करें, लेकिन जो कंजर्वेटिव एमपीज हैं वो कहते हैं कि ये क्रिमिनलाइज करेगा बहुत सारा बच्चों और जो मां बाप के बीच में जो बातें हैं और फिर जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनके साथ, तो इसलिए जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अच्छा माजिद भाई, आखिरकार गरीबों के लिए बिल आ गया, वर्किंग फॉर वर्कर्स एक्ट जो ऑन्टेरियो के अंदर आया है, जो मॉन्टी मैकनॉटन साहब ने, जो लेबर मिनिस्टर है ऑन्टेरियो के, उन्होंने अनाउंस किया है और उन्होंने कहा है कि माजिद भाई चाहे आपको कितना भी रोकें, जितना भी कहें कि आपने जो है 5 बजे के बाद इधर ठहरना है, आपने ठहरना नहीं है, अब आप घर वापस जा सकते हैं।
ठीक है
ठीक है,
ठीक हो गया,
बस ठीक है माजिद भाई। आई ना आपने खबरदार जो है हमें जरा जोर लगाया कि नहीं नहीं ठहर जाओ, गपशप करेंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, लेकिन इसमें बहुत अच्छी चीजें हैं। بہت اچھی چیزیں یہ آئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ جس وقت جیسے 5 to 9 جاب ہے یا جو بھی آپ کے ڈیوٹی آورز ہیں وہ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ چیزیں اس طرح کی سیٹ کر دیں, وہ جو آؤٹ آف آفس ہے نا وہ اس طرح کے نوٹیفیکیشنز کر دیں اور اب آپ کو کوئی زور نہیں لگا سکتا آپ کریں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جی جو انٹرنیشنلی ریکگنائز پروفیشنلز ہیں ان کے لیے اب یہ زور نہیں لگایا جائے گا کہ نہیں نہیں ہر حال میں جو ہے کینیڈین ایکسپیرینس ہونا چاہیے. جیسے وہ میں نے ایک دفعہ ایگزامپل دی تھی ہماری پاکستانی گائنوکالوجسٹ کی جس نے کہا کہ بھائی بچہ تو ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے, تو یہ نہیں ہے کینیڈا میں کہ ناک یا منہ سے ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے کینیڈا کا ایکسپیرینس مجھے کیوں چاہیے, آلریڈی شی ہیڈ یو نو 25-30 ایئرز ایکسپیرینس. تو یہ چیز انہوں نے یہ کلاز بھی جو ہے وہ ختم کر دی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ اس کی وجہ سے جو ہے بہت سارے اپرچونٹیز لوگوں کے لیے پیدا ہوئیں گے. اور یہ پوری ڈیٹیل جو ہے جی ہماری ویب سائٹ پہ ہم ڈالیں گے کل یہ اسٹوری, تو آپ جو ہے یہ وہاں پہ جو ہے پڑھ سکتے ہیں کہ اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. اور اس کے لیے جو ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے لیے بھی اب کہا گیا کہ آپ ایک بانڈ بھریں گے لیبر منسٹری کے ساتھ, اور ان کیس اگر کوئی کمپلینٹ کرتا ہے کہ جی ہمیں اس ٹیمپ ایجنسی نے پیسے نہیں دیے تو پھر وہ جو انہوں نے سیکیورٹی رکھوائی ہوئے گی اس میں سے پیسے لوگوں کو دیے جائیں گے. تو بہت اچھی چیزیں ہیں. اور یہ پہلا بل ہے جو لے کر آئے ہیں جس کے اوپر ان کو لبرلز نے بھی اور این ڈی پی نے بھی دونوں نے ان کو جو ہے انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے. اچھا جناب, اس کے علاوہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے آج بتایا ہے ان کی جو منسٹری کی جو ہیں فارن منسٹری کی سپوکس پرسن کلارا ٹروڈو, انہوں نے آج کہا ہے جی کہ یو ایس اے کے ساتھ اب یہ جو پائپ لائنز کے جو قصے ہیں اس کے اوپر ہماری جو ہے وہ بات چیت شروع ہو گئی ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ یہ سب سے پہلے انہوں نے 1977 میں ایک ٹریٹی کیا تھا اینبرج انک لائن کے لیے, اور اس کے بعد جو ہے جو مشیگینی تھا اس کے اندر انہوں نے اس کو کر دیا تھا کٹ کرنے کے لیے, کیونکہ انہوں نے کہا جی ہمارے بڑے انوائرمنٹل ایشوز ہیں. تو یہ اور بہت سی چیزیں جو ہیں اس کے اوپر جو ہے اب آج جو اٹوا نے کہا ہے کہ جی ہماری بات چیت اب یو ایس گورنمنٹ سے ہو رہی ہے, اور اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ لائن 5 کا کیا فیوچر ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری جو ہے کینیڈین اکانومی کے لیے. تو آنے والے دنوں میں لبرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں بہت سارے جو نئے فیصلے ہوئیں گے وہ آپ کو سنائی دیں گے. آج جناب بچوں نے بڑا چیتی گیری دکھائی ہے یہاں پہ جو ہے کینیڈا کے اندر. ہاں بچوں نے آج کیا کہا ہے, انہوں نے کہا جی کہ آپ کہتے ہیں کہ 1970 میں اصل میں یہ بل چینج ہوا تھا, پہلے آپ کو پتا ہی ہے کہ بچوں کی جو ووٹنگ ایج تھی وہ 21 تھی, 1970 میں انہوں نے اس کو کم کر کے 18 کر دیا. اس پہ بھی بچوں کو اعتراض ہے, تو آج بچوں نے ایک بہت بڑا سارا پٹیشن جو ہے وہ انٹیریو کی سپیریئر کورٹ کو دیا ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ واٹ از دس, وی آر دا فیوچر آف دا کنٹری, تو ہمیں جو ہے یہ اس سے ووٹنگ سے فیڈرل الیکشن کی جو ووٹنگ ہوتی ہے اس سے باہر کیوں نکالا جا رہا ہے, تو یہ 18 سے بھی جو ایج ہے اس کو کم کریں. اچھا اس کے لیے انہوں نے جو ہے دیا کیا ہے کلاز کیا پہ کلازز کیا پیش کی ہیں, انہوں نے دو کلازز پیش کی ہیں. انہوں نے کہا جی ایک تو یہ جو چارٹر آف رائٹس ہے اس کا جو سیکشن 13 اور 15 ہے اس کے انڈر یہ چیزیں ان کانسٹیٹیوشنل ہیں کہ ہم کو جو ہے رائٹ نہ دیا جائے. اچھا وہ کیسے, سیکشن 3 کیا ہے چارٹر آف رائٹس کا, چارٹر آف رائٹس کا یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ رائٹ ٹو ووٹ رکھتا ہے اگر وہ کینیڈین نیشنل ہے, ٹھیک ہے جی. حالانکہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ 18 ایئر سے کم ہیں تو پھر آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے معاملات میں, لیکن بینگ اے کینیڈین اینڈ ہیونگ اے رائٹ ٹو ووٹ, وہ کہتے ہیں جی اس کے اوپر آپ زیادہ غور کریں ان ورڈز کے اوپر. سیکشن 15 کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے انڈر دا لا ایکول ہے اور اس کے اوپر ڈسکریمنیشن ریس نیشنل کاسٹ کریڈ کے لیے آپ کر نہیں سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ جس وقت آپ کہتے ہیں جی کہ یہ اب چھوٹے ہیں یا یہ نہیں کر سکتے یا یہ کمیونٹی ابھی نہیں کر سکتی, تو یہ چارٹر آف رائٹس کے اگینسٹ ہیں یہ چیز. تو ہاں تو
بہرحال ہاؤ فار ان کہاں سے آپ جانا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ تو پھر وہ جو ہمارا کرمنل کوڈ ہے اس کو بھی چینج کریں آپ کہ بھائی جو 18 سے کم کے بچے ہیں تو ان کا نام نہیں لے سکتے ہم ابھی, اور ان کو جو ہے ایڈلٹس کی طرح ہم جو ہے سزائے نہیں دے سکتے. بچوں کو بھی کسی نے سمجھایا ہوگا نا, کسی نے بتایا ہوگا,
کسی نے کہا ہوگا, بہرحال اینی ویز ان کی طرف سے ایک آیا ہے وچ از سم تھنگ ویری, مجھے تو لگا بڑے اسمارٹ ہوں گے جنہوں نے یہ سارا لا جو پڑھا ہے نا کہ جی چارٹر آف رائٹس میں یہ اور یہ ہے یہ ہے. تو بہرحال اب ظاہر ہے کورٹ تو اس کو جواب دے ہی گی کہ بھائی جیسے آپ نے کہا کہ پھر تو یہ بھی چینج کرنا پڑے گا وچ از ناٹ پاسبل. بہرحال جی آج بچوں نے بڑی یہ ہمت کہا, انہوں نے کہا جی ہم جو ہے کینیڈا کے 1/4 پاپولیشن ہے, तो हमसे ये हमारा राइट आप कैसे ले सकते हो. बट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. यानी बच्चे बड़े अब स्मार्ट होते जा रहे हैं. वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट. अच्छा जी, स्टैट्स कैनेडा की आज एक रिपोर्ट है और इसके मुताबिक जी कनेडियंस तो पेंडेमिक में कुछ ज्यादा ही दुख में चले गए हैं जी. स्टैट्स कैनेडा के मुताबिक जो उन्होंने सर्वे किया है, उन्होंने सर्वे किया है 15 से 49 के बीच में लोगों को, और उन्होंने स्टैट्स कैनेडा वालों ने पूछा है कि भाई आप बच्चे करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, और आप फैमिलीज कब स्टार्ट करना चाहते हैं. सो टू देयर सरप्राइज कि ये जो ग्रुप था 15 से 49 में, इसमें क्लोज टू 24% जो बच्चे और ये ग्रुप था, इसमें उन्होंने कहा जी कि हम तो बिल्कुल कोई बच्चे करना नहीं चाहते हैं. और इसके अलावा उन्होंने उन्होंने कहा जी कि अगर हमारा कोई प्लान था भी तो उस प्लान को हमने खत्म कर दिया है. और उन्होंने कहा जी कि ये जो है हम तो हो सकता है कि बच्चे कभी भी ना करें. है? अच्छा, इसमें सिर्फ आप सोचें 4% लोगों ने कहा है कि नहीं हम बच्चे करेंगे, और जैसे हमने प्रीवियसली प्लान किया था हम बच्चे करेंगे.
अमेजिंग.
अब देखिए पेंडेमिक कैसे चीजें चेंज कर रहा है. कैसे चीजें, विच इज अमेजिंग. या वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, अगेन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू कवर. तो इसलिए अच्छा जी, WHO ने आज बहुत ही क्लियर गाइडलाइंस दे दी हैं. उन्होंने कहा है जो लोग 60 से ऊपर हैं वो इंटरनेशनल ट्रेवल ना करें. बिल्कुल इंटरनेशनल ट्रेवल ना करें. वो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, या के जिनको के वैक्सीन जो लगी थी और फिर उनको कोविड हो गया था, या वैक्सीन नहीं लगी मगर कोविड भी नहीं हुआ लेकिन वो 60 से ऊपर हैं, तो वो बिल्कुल ट्रेवल ना करें.
60 से ऊपर वाले घरों में बैठे,
घरों में बैठे चने करें. चैन से बैठो. ये ओमनीक्रॉन जो है ये आपको कहीं जो है और खतरा ना पैदा कर दे. म्यूनिख में आज जर्मनी में बड़ा ही आज एक अफसोस का वाकया हुआ है, और वो ये हुआ है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने में ना मजद भाई बहुत सारे बॉम्ब्स जो थे वो जैसे करते हैं ना लैंड माइंस बिछाई थी, वैसे ही बॉम्ब्स बहुत सारे छुपा दिए थे जर्मनी के अंदर. ठीक है जी. तो अब क्या होता है कभी कभी जर्मनी में कहीं कहीं धमाका हो जाता है. जब धमाका होता है तो पता चलता है जी ये तो बॉम्ब था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, यू नो 76 ईयर से ये उधर है. अच्छा, अब जर्मन गवर्नमेंट ने वैसे बहुत ही मतलब मुस्तैदी से आप वर्ड यूज कर सकते हैं कि ये ढूंढी थी साइट्स और फाइंड आउट किया था. और कभी कभी ये क्या करते हैं, ये खुद जो है इलाके के से लोगों को इवैक्यूएट वगैरह करा के तो जो है वो उधर धमाके खुद करते हैं, उसको कर लेते हैं ताकि वो उसका खतरा ना रहे. लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि एक कंस्ट्रक्शन साइट थी, एक रेलवे बना रहे हैं वहां पे म्यूनिक के अंदर जो है रेलवे लाइन जो है उसके पास जी एक वो बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड हो गया, तो जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए हैं, एक तो काफी सीरियसली है. तो अब जो है ये आज जो वहां पे जो है काफी भगदड़ मची क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है ये एरिया. हाँ, और ये बड़ा वन ऑफ द बिजिएस्ट जो रेलवेज हैं उसके पास है ये एरिया. तो वहां पे काफी बहरहाल जी लोगों को वहां से फारग शारग कराया, साइड पे करवाया. और वो अच्छा जनाब, हम बता रहे हैं बहुत दिनों से यूएसए जो हमारे अंकल सैम है, चैन नहीं है ना उनको भी, हर किसी का नाक खींच रहे हैं, किसी का कान खींच रहे हैं, रशिया चाइना. अच्छा जी, अब आज रशिया ने इनकी फॉरेन जो मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है मरिया जकारोवा, देखें मुझे क्या हसीन औरत है. ओह क्या टॉल स्लिम, इतनी कोई ब्यूटीफुल है. मेरे ख्याल में मुझे लगता है जो मैंने तस्वीरों में देखा है 6 फुट कोई कद है इस लड़की का. बहरहाल जी बड़ी हसीन औरत है. अच्छा जी, ये खैर फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है रशिया की. इसने आज जी कहा है कि रशिया ने यूएस स्टाफ को कहा है कि January 31st तक, जिनके 3 साल पूरे हो गए हैं यूएस एम्बेसी में, इमीडिएटली वो सारे डिप्लोमैट्स वापस वॉशिंगटन चले जाएं. अच्छा जी, अब ये बड़े अफसोस की बात इसलिए इसको मनाया जा रहा है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब और इनके जो रशियन काउंटर पार्ट हैं सर्जे लेवरोव, ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन ऑन यूरोप स्मिट जो स्टॉकहोम में कल से शुरू होने वाला है, उसमें इन दोनों की मुलाकातें होने वाली थीं. और उससे एक दिन पहले जी मॉस्को ने ये हुक्म दे दिया है कि यूएस जो ऑफिशियल्स हैं वो चले जाएं. अच्छा, ये कहते हैं लोग कि ये इन्होंने हुक्म पहले नहीं दिया, इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि जिन रशियन डिप्लोमैट्स को 3 साल हो गए हैं अमेरिका के अंदर वो January 30th को चले जाएं. तो वो कहते हैं जी कि चूंकि अमेरिका ने कहा तो उसके रिटेलिएशन में फिर अब इन्होंने भी कहा. तो अब जो कल मुलाकात होगी उसमें क्या बोलेंगे ये. व्हाट इज दिस माजिद भाई, व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है दुनिया में. है जी. अच्छा जी, अच्छा जनाब, ये मिशिगन की जो स्टोरी है ये तो आफाबाजी आपको बता ही चुकी है, लेकिन इसमें यह हुआ है कि जो इसमें 3 लोगों जो मारे गए हैं, तो एक बहुत ही अफसोस का वाकया ये हुआ कि एक बच्चे को ये फटाफट रश कर रहे थे लेकिन उसको भी गोलियां इतनी लगी हुई थी कि वो उसकी भी जो है वो जो पुलिस कार थी जिसमें लेके जा रहे थे उसमें डेथ हो गई है. और एक बच्ची जो है इसमें से उसकी सर्जरी तो कर दी गई है लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि उसकी काफी खतरनाक हालत है, तो मुश्किल है उसका भी बचना है। और ये ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल था वहां पे मिशिगन के अंदर, ये उसके डेट्रॉइट के पास है। और उसमें जब इनको कोई, वो कहते हैं जी कि हमको तकरीबन 100 911 पे कॉल्स आई हैं कि एक लड़का जो है बंदूक लेके फिर रहा है स्कूल के अंदर, तो हम इमीडिएटली भागे और हमने उस लड़के को पकड़ लिया। जब हम पकड़ने गए तो उसने अपने हाथ उठा लिए, लेकिन अभी तक मोटिव नहीं समझ आया कि इसने ऐसा क्यों किया। ये इसके बाप की गन थी जैसे कि अरफाबा जी ने बताया, तो ये किया। तो अभी इसका ना नाम किया ना मोटिव बताया, तो अब ये कल तक आएंगी। CNN ने जनाब आज एक बड़ी, ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, CNN ने क्रिस कोमो को निकाल दिया है आज। अच्छा जी, क्रिस कोमो को क्यों निकाले और कौन है क्रिस कोमो? क्रिस कोमो आपको पता है कि न्यूयॉर्क सिटी के जो गवर्नर थे, जो एंड्रयू कोमो, उनके ये भाई थे। CNN का कहना है जी कि ठीक है, वी अंडरस्टैंड दैट फैमिली कम्स फर्स्ट बिफोर जॉब, लेकिन ही वेंट टू फार अपने भाई को बचाने के लिए, जिसके के ऊपर सेक्सुअल एलिगेशंस थे और 11 औरतें सामने आके उन्होंने कहा था कि जो जो इसके ऑफिस में काम करने के लिए जाता था या मांगता था उसके ऊपर ये सेक्सुअल हरेसमेंट करता था और वो करता, असॉल्ट करता था, उसको बचाने के लिए भाई ने बहुत कुछ कवर अप किया। वो सारे डॉक्यूमेंट्स अब हमको मिले हैं जो पहले उस वक्त नहीं पता थे, तो इसलिए ये डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और इसलिए जो है इसको निकाला जा रहा है। सस्पेंड किया जाएगा।
आई रियली लाइक क्रिस कोमो, ही इज अ वेरी गुड जर्नलिस्ट,
यू आर वेरी गुड जर्नलिस्ट। हाँ जी, बहरहाल उसको जी, वो कहते हैं जी इसको सस्पेंड हम कर रहे हैं अभी के लिए, तो ये ठीक नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी के मुताबिक जो है वो कहते हैं ट्रंप्स डिसीजन टू टियर ईरान न्यूक्लियर डील इन 2018 वॉज नॉट लेस देन अ डिजास्टर। अच्छा जी, डिजास्टर कैसे था? वो कहते हैं जी हुआ क्या है, ये जिन्होंने डील जब बनाई थी ईरान के साथ कि जी हम बैठ के और हम जो है इनको बोलेंगे ईरान को कि आपने और ज्यादा ये आर्सेनल और चीजें नहीं बढ़ानी हैं, जो कि अब कहा जा रहा है, जो इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ईरान ने बेशुमार जो है ये अब ये विद इन, वो कहते हैं जी 15 मिनट्स अब ये बना सकते हैं अपने सारे जो है न्यूक्लियर जो वेपन्स की एटलीस्ट तैयारी उसकी कर सकते हैं। तो वो कहते हैं जी कि ये हुआ क्या था कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इसराइल के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे माइक पोम्पियो साहब, उन्होंने ट्रंप साहब को कहा था कि नहीं नहीं नहीं, इस डील में बैठने की जरूरत नहीं है, इस डील से वापस आओ। ये डील जो ओबामा साहब के जमाने में ईरान के, वो कहते हैं जी वैसे तो डील बहुत ही बैड थी। आज जो हैरट्स न्यूज़पेपर है उसने जो किया और उसने कोट किया है लेफ्टिनेंट जनरल गदी एस्कन कॉट जो के इसराइल के टॉप मिलिट्री कमांडर थे, वो कहते थे जी इसका नुकसान सबसे ज्यादा अब इसराइल को भुगतना पड़ेगा थैंक्स टू मिस्टर ट्रंप। अगर ये डील हो जाती तो ये जो खतरे IAEA और जो दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये जो है विद इन डेज चीजें बना सकता है, और कहते हैं जी 1.5 या कि 2 ईयर्स में फुल कैपेसिटी वॉर हेड्स की ये कर सकता है ईरान, अचीव कर सकता है। तो वो कहते हैं जी कि वियना के अंदर ये जो टॉक्स शुरू हुए हैं जिसमें कि चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूके बैठा हुआ है, और इसमें आप देखें मजे की बात क्या है, उस टेबल के ऊपर यूएस को बैठने नहीं दिया जा रहा। यूएस को ईरान ने कहा है तुम साथ वाले कमरे में बैठो, तुम इस टेबल पर नहीं बैठोगे अगर अब तुम इधर आ ही गए हो। कैन यू इमेजिन, ईरान ने कहा है कि इस ये जो हमारी टॉक्स वियना के अंदर हो रही हैं, इस डेलीगेशन ये जो हमारा सारा इन कंट्रीज के साथ तुम नहीं बैठोगे बिकॉज यू विड्रू, उन्होंने खुद विड्रॉ किया। तो अब ये टॉक्स एक कमरे में चल रही हैं और अमेरिका दूसरे कमरे में बैठा सुन रहा है उसी जगह पे उसी वेन्यू पे। तो वो कहते हैं जी ये टॉक्स क्या होंगी, ये क्या टॉक्स होंगी, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी जो है ईरान अपना इतना न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम आगे बढ़ा चुका हुआ है, तो इसका देखें आप कितना नुकसान होगा। तो आज ये जो हैरट्स न्यूज पेपर में जो न्यूज आई जो कि इसको यानी न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी वो किया है अपना यानी स्पिन दिया ऑफकोर्स, तो उन्होंने कहा जी कि अगर ये चली जाती डील चल पड़ती तो फिर ईरान इस वक्त इस सिचुएशन में ना होता, क्योंकि स्केल डाउन कर लेता ना अपना सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ईरान जो है अब वो कहते हैं जी अगेन ईरान यही कह रहा है उनको बार बार कि ये डील अगर होगी सैंक्शंस तुम उठाओगे, और सिर्फ ये न्यूक्लियर सैंक्शंस नहीं, ये जो हमारे ऊपर जो ये बदबख्ती है ना ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस थे फलां थे ढींग ये सारा कुछ उठाओगे फिर अब हम तुम्हारे साथ ये डील साइन करेंगे। तो आप कह रहे हैं देखो कितना नुकसान हो रहा है अब ये
सही हो गया
ना, वो कहते हैं जी हाँ बस ये। अब जजीरा की जनाब आज एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट है जो कि इन्होंने एक डाटा जो इन्होंने पब्लिश किया है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे जो कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन में आया था, उसके मुताबिक मजद भाई दुनिया का सबसे जो है मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी दुनिया का कौन सा है बताएं जरा, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंडन, कौन सा बताएं सबसे एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड?
न्यूयॉर्क।
आर यू श्योर 100%? जीरो नंबर आपके 100 में से आपको जीरो नंबर मिले हैं, इसलिए कि एट द मोमेंट दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कैन यू इमेजिन इज टेल अवीव, इसराइल का जो सिटी है टेल अवीव, यस इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट मैगजीन। इसके बाद नंबर टू पे है अब पेरिस, क्योंकि जो कि जमाने किसी में नंबर वन पे होता था। नंबर थ्री पे है सिंगापुर एंड देन ज्यूरिच, देन हांगकांग, न्यूयॉर्क सिटी, जिनीवा, कोपनहेगन, लॉस एंजलस एंड ओसाका। और दुनिया का मजा भाई चीपेस्ट सिटी टू लिव कौन सा है बताएं आप जरा, चीपेस्ट सिटी? नहीं 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 नहीं, डमास्कस इन सीरिया। ठीक है जी, तो ये जनाब आज जो लिस्ट आई है तो इसमें लोगों को काफी जो है हैरान किया है। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तालिबान के साथ लड़ाई हुई, इसमें सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया का जो भी आपने सैफुल्ला साहब का सुना है बयान के जी ईरान की तरफ से पहल हुई थी, नहीं, इंटरनेशनल मीडिया ने कहा है कि ईरान की तरफ से पहल नहीं हुई थी, पहल तालिबान की तरफ से हुई थी। और यहां पे ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पे ये जो झड़पें हुई हैं शगालाक और निमरोज के प्रोविंस के अंदर, तालिबान ने पहले एक मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत उन्होंने पहले ओपन फायर किया, दिस इज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मीडिया।
सही,
तो सैफुल्ला साहब ने कहा कि नहीं पहले ईरान ने उनके ऊपर किया था, ये इंटरनेशनल मीडिया में ये रिपोर्ट नहीं है। जितने भी आज मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं, चाहे वर्ल्ड जजीरा है चाहे दूसरे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, सब में ये कहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से पहले जो है फायरिंग हुई उसका जवाब ईरान ने जो
है, सैफुल्ला साहब ने भी कहा ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग,
हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले जो है, उन्होंने कहा कि ईरान जो है बड़ा हाई हैंडेडनेस दिखाता है और ईरान ने उनको अटैक किया था उनके ऊपर पहले। नो, इंटरनेशनल मीडिया से नो, तालिबान फर्स्ट जो है उन्होंने अटैक ईरान पे किया, तो ईरान ने रिटेलिएशन में जो है फायरिंग की। ये है, सो जस्ट अ लिटिल वो। अच्छा जी, इंडिया के अंदर तो आज बहुत ही अजीब व गरीब एक बात हुई, और वो अजीब व गरीब बात ये है, आपको पता ही है कि बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो हैं बहुत ही डाई हार्ट बीजेपी के जो हैं वो लीडर हैं। अच्छा, इन्होंने आज अपनी ही बीजेपी की गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ आज बयान दिया है। उन्होंने कहा जी, उसकी वजह क्या, उन्होंने कहा जी कि मुझे तो हंसी आ रही है कि मैं जिस वक्त राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट में क्वेश्चन पूछता हूं कि एलएसी के ऊपर हमारा क्या जो है स्टेक है इस वक्त, एलएसी के ऊपर जो ये लद्दाख में ये जो चाइना अंदर घुसाया था, तो ये मुझे कहते हैं कि नहीं नहीं तुम चुप करके बैठो, तुम्हारा क्वेश्चन हमने रिमूव कर दिया, ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, इसका हम जवाब नहीं देंगे। तो वो कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब कि गवर्नमेंट मेरे क्वेश्चंस को क्यों डक कर रही है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि चाइना ने हमारे कितने हिस्से के ऊपर जो है कब्जा किया हुआ है। और इनसे फिर रिपोर्टर्स ने पूछा कि क्या आप जो हैं ये जो चाइना ने इलीगली इंडियन जो टेरिटरी कंसीड की, जो सीड की है, इसके ऊपर कोई आप एक्शन ले सकते हैं, तो वो कहते हैं हाँ जी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अंडर आर्टिकल 1 हम चाइना के खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकते हैं, मगर ये इसका जवाब भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कांग्रेस के जो लीडर थे केसी वेणुगोपालन, उन्होंने भी पूछा था कि एक क्वेश्चन कि भाई एयरपोर्ट के ऊपर ये जो एनआरआईज आ रहे हैं उनको तुम लोग क्यों हैरेस कर रहे हो मुंबई में, वो आते हैं एनआरआईज तो तुम उनको कहते हो कि तुम लोग बाहर से पैसा भेज रहे हो, तुम लोगों ने फार्मर्स की जो है इतनी लंबी ये एजुटेशन चलाई है, तो इसका जवाब पार्लियामेंट दे कि उन मस्कीनों को आप क्यों हैरेस कर रहे हैं। कहते हैं जी, वो जो है ये वेणुगोपालन साहब हैं, वो कहते हैं जी मेरा भी क्वेश्चन जो है वो कह रही है राज्यसभा के, तुम्हारा क्वेश्चन नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट, हम जवाब नहीं देंगे। इसके अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं बनोए विश्वाम, वो भी कहते हैं, वो कहते हैं मुझे भी एक जवाब चाहिए गवर्नमेंट से कि ये जो एनएसओ, ये जो इसराइल की कंपनी थी जिसने पेगासस ये स्पाईवेयर बनाई थी, और हमें पता चला कि अलेजली गवर्नमेंट ने उसको अपोजिशन और एक्टिविस्ट और जर्नलिस्टों को की इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये अप्लाई किया था, तो तुम लोगों ने क्या किया है कि नहीं किया, इसको भी कह दिया गया कि ये नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, इसका भी हम जवाब नहीं देंगे। तो आज काफी वहां पर हंगामा मचा, उन्होंने कहा जी कि ये क्या चीज है, हर चीज नेशनल के अगेंस्ट है, हमको किसी बात का जवाब नहीं मिलेगा, तो फिर हम पार्लियामेंट में बैठे काहे को हैं। तो आज काफी वहां पे हुआ। अच्छा जी, हमारी दीदी इज बैक, ममता बनर्जी आज का जो है बड़ी, अब वो चूंकि अब इलेक्शंस आने वाले हैं कुछ दिनों में, तो महीनों में, तो बस ये सारे बड़े वो हुए हैं आज जनाब। हाँ जी, तृणमूल कांग्रेस जो है उसने आज मुंबई में, इनका दो दिन का दौरा था, वहां पर इनका वो अरेंज किया हुआ था, वहां पर आई तो इन्होंने जी जो तृणमूल कांग्रेस थी उसने बेशुमार पेंटर्स, फिल्म स्टार और ऑथर्स और एक्टर्स और जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट जो थे वो बुलाए हुए थे। तो दीदी हमारी जो है ममता बनर्जी, उसकी मुलाकात वहां पर जो स्वरा भास्कर है बॉलीवुड की स्टार उनसे हुई तो उन्होंने कहा कि तुम बड़ी वोकल हो जो इश्यूज जो मुल्क में गलत होते हैं उस पर बात करती हो, तो तुम क्यों नहीं पॉलिटिक्स को ज्वाइन करती हो। तो जब स्वरा भास्कर ने कहा कि दीदी ने तुमको ये कहा है तो तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन करोगी, तो उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी देखूंगी। इसके अलावा वहां पर इन्होंने बुलाया हुआ था मुनव्वर फारूकी को, ये वो लड़का है कि जिसको जो है जेल में डाल दिया गया था, जो कि सिर्फ एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो उसने कहा जी नहीं नहीं तुमने तो हिंदू जो सेंटीमेंट्स हैं उनको बड़ा हर्ट कर दिया। बहरहाल ये भी वहां पे था, तो इसको बड़े थ्रेट्स वगैरह भी आए थे, तो उसकी भी बड़ी इन्होंने तारीफ की कि इस तरह के, दीदी ने कहा कि इस तरह के बहादुर लोग हैं जो कि आज भी खड़े होकर अपने करियर्स को रिस्क पे डाल के जो हैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। फिर वहां पे वो जावेद अख्तर साहब भी आए हुए थे और भी बेशुमार लोग थे। तो यहां पे जो ममता जी हैं उन्होंने फिर बड़ा ओपनली कहा, उन्होंने कहा कि शाहरुख खान जो है वो मेरा भाई है और उसके बेटे के साथ जो भी एनसीबी ने किया वो बिल्कुल जो है गलत था वो बिल्कुल। और क्योंकि होता ही है, क्योंकि जो आपको पता ही है कि शाहरुख खान साहब जो है कोलकाता नाइट राइडर्स चलाते हैं ना, तो हर साल दिसंबर में वो यहां पे आते हैं, एक इंटरनेशनल फेस्टिवल लगता है कोलकाता में, तो वो आते हैं तो ममता बनर्जी से मिलते हैं। और ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि अब कितनी सच्चाई है, बहरहाल ये कहा जाता है कि ममता जी हर साल राखी भेजती हैं शाहरुख खान को, वो कहती है ये मेरा भाई है, तो वो कहती हैं कि इसके साथ जो कुछ भी किया गया है गलत है। तो ये आज बहुत हंगामा था जी वहां पे, टीएमसी ने काफी मतलब है बड़ा ये जलसा सा ही आप कह सकते हैं गैदरिंग की हुई थी, लोग काफी बुलाए हुए थे। तो वहां पे से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की आज एक रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक जो संयुक्ता किसान मोर्चा है वो आज बड़े नाराज हैं सेंटर की गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि वो कहते हैं जी कि आपको हमने ये जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर से नरेंद्र सिंह तोमर साहब इनको कहा था कि जी जितने किसान ये शिंगू और ये दूसरे बॉर्डर्स पे मर गए हैं एजिटेशन के बीच में उनकी फैमिलीज को कॉम्पनसेशन दो। अलेजली जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर साहब हैं उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट को कोई रिपोर्ट नहीं मिली कि कोई किसान मरा है एजिटेशन के बीच में, एज अ रिजल्ट हम कोई कॉम्पनसेशन नहीं देंगे। तो ये आज इन्होंने मोर्चा निकाला हुआ था और उन्होंने कहा कि नहीं हमारी बातें जो है मानी जाएं, इसलिए कि तकरीबन 689 किसान जो है एक साल में मरा है इस एजिटेशन के बीच में। तो ऐसे है बीबीसी की जनाब एक रिपोर्ट है और ये भी बहुत ज्यादा आंख चौंका देने वाली है, और ये है त्रिपुरा फियर एंड होप आफ्टर एंटी मुस्लिम वायलेंस। और इसमें उन्होंने फिर से वही कहा है कि जी जब से बीजेपी की गवर्नमेंट 2018 से आई है, क्योंकि पहले त्रिपुरा के अंदर 25 साल कम्युनिस्ट रूल था, तो अब जब से इनकी गवर्नमेंट आई है तो मुसलमान खासतौर पे जो है कॉन्स्टेंटली जो है शिकायत कर रहे हैं कि हमारी मस्जिदें अलेजली वेंडलाइज की जाती हैं, हमारे घर और शॉप्स जलाए जाते हैं। तो ये है, तो वो आज बीबीसी ने रिपोर्ट किया और उन्होंने कहा जी कि 9% जो है त्रिपुरा में मुसलमान हैं आउट ऑफ द 4.2 मिलियन पॉपुलेशन एंड 83% हिंदूज हैं, और यहां पे जो है कॉन्स्टेंटली तो मुसलमान जो है वो अब सड़कों पर बाहर निकले हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि भई हम तो इतने चैन आराम से इतना अरसा सा रह रहे थे, 2018 से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो ये मार कुटाई मारो घेरो जलाओ ये शुरू हो गया। बीबीसी कहती है जी कि इसका हम सबसे बड़ा सबूत ये देते हैं कि हमको पता चला था कि दो जर्नलिस्ट जो थे उनको कुछ दिन पहले पकड़ के ले गए थे। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट कहती है जी हम तो बड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव करते हैं, कहते हैं जी बिलीव श्रीफ कोई नहीं करते, क्योंकि हमारी खुद की बीबीसी की टीम को पकड़ के ये ले गए और इन्होंने कहा लोकल पुलिस ने कि तुम बताओ भाई तुम लोग इधर क्या कर रहे हो त्रिपुरा में। उन्होंने कहा जी हम बीबीसी की टीम है, लंदन से आए हैं, हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कहते हैं नहीं नहीं तुम्हारा मकसद क्या है, क्या रिपोर्टिंग कर रहे? तो कहते हैं जी हमें भी बिठा गए वहां पर रखा कितना, तो हम अगर लोकल जर्नलिस्ट होते तो हमें भी जेल में डालते ऐसे। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है उन्होंने आज डिस्कस किया है अंडर जो चेयरमैन है इसके मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड सोशल इनिशिएटिव्स असद उमर साहब, और उन्होंने कहा है जी, और इनके साथ जो थे एसएपीएम के डॉक्टर फैसल सुल्तान भी थे, और यहां पे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं मेजर जनरल मोहम्मद जफर इकबाल और बहुत सारे चीफ सेक्रेटरीज और हेल्थ मिनिस्टर, सब ने कहा है कि जी बूस्टर शॉट्स जो हैं अब इमीडिएटली जो है हेल्थ केयर वर्कर्स और पीपल अबव 50 एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल जो है उनको फौरन दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अथर मिनल्ला, उन्होंने आज एक दफा फिर से गवर्नमेंट को बड़ा खींचा है और उन्होंने कहा है कि ये जो भी मिसिंग पर्सन होते हैं ये स्टेट फेल होती है तभी ये लोग जो है इनका पता नहीं चलता है। ये पिटीशन जो थी फाइल की थी राणा महमूद इकराम साहब ने, जो कि जर्नलिस्ट मुदस्सर महमूद के फादर हैं, और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अगस्त 19, 2018 से गायब है। यहां पे आज ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर शीरी मजारी साहिबा भी थी, तो जो अथर मिनल्ला साहब ने उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त कोई आदमी गायब होता है इसका मतलब है कि द स्टेट हैज फेल्ड टू एनफोर्स इट्स लॉ। और वो कहते हैं जी कि जब कोई आम आदमी गायब हो जाता है तब तो पूरी सारी नेशनल जो वो پولیس اور وہ فورسز جو ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں, تو یہ کامن آدمی کے لیے بھی آپ کا یہی ہونا چاہیے حرکت ہونی, آپ کا یہی ایکشن ہونا چاہیے. تو آج کافی انہوں نے جو ہے ڈانٹا ہے آج گورنمنٹ کو اور ان کے منسٹرز کو. پاکستان کو الیکٹ کیا گیا ہے ایز اے چیئر فار دا گروپ آف 77 کنٹریز, تو اس کو بولتے ہیں G77 پلس چائنا. تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں آج اس پہ بات کر رہے تھے, کیونکہ اس کی جو بنیاد تھی اور جو اس کا آئیڈیا تھا وہ پاکستان نے دیا تھا, اور اب تو خیر اس میں 77 کنٹریز نہیں ہے, اس کو G77 اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اوریجنلی 77 کنٹریز نے سٹارٹ کیا تھا, اب اس میں 134 کنٹریز ہیں. تو یہ نیو یارک کے میں جو یو این کے ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ یہ میٹنگ ہو رہی تھی, جس میں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جتنے غریب ملک ہیں کووڈ کے اور اس پینڈیمک کے رہتے ہوئے, ان کے آپ قرضے سب سے پہلے معاف کریں, اور $100 بلین جو ہیں وہ اینولی آپ کلائمیٹ فائنینسنگ کے اوپر جو موبلائز کر رہے ہیں, اس سب کا فائدہ جو ہے اس کے اوپر بھی ان کو بھی ہونا چاہیے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. اور ڈیولپنگ کنٹریز کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو اللیسٹ فائنینشیل فلو ہے جو آپ کے بڑے بڑے بینکوں میں ہمارے ملکوں غریبوں سے چوری کر کے لوگ لے جاتے ہیں, جو کہ نیشنل ایسٹ ہوتے ہیں, ان سب کا یہ لوٹا ہوا پیسہ آپ ہمیں واپس کریں. تو یہ آج جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو کہا ہے,
ویری اسٹرانگ میسج.
اچھا جناب, سب سے بڑی اور بڑی پیاری آج یہ خبر ہے, اور وہ ہے سکردو ایئرپورٹ کے بارے میں. دنیا کا اب یہ ہائیسٹ جو ہے وہ لیول پہ ایک ایئرپورٹ بنایا, اور آپ دیکھیں کیا بیوٹیفل یہ ہے. اس کے اوپر جو ہے کچھ عرصہ پہلے جو ایویشن کے منسٹر تھے غلام سرور خان, انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو اپ گریڈ کریں گے, ٹرمینل بلڈنگز بنائیں گے, ایپرنز بنائیں گے, ہینگرز بنائیں گے اور نیو رن وے بنائیں گے. تو وہ جناب بن گیا ہے, اور اب کل سے December 2nd سے یہ کمپلیٹلی آپریشنل ہوئے گا. بیوٹیفل. اچھا جی, ہماری باجی جو ہے وہ بھی اب چپ کر کے بیٹھتی نہیں ہے نا. باجی جو ہے اس کے خلاف ایک ایڈوکیٹ ہے, ایڈوکیٹ چرنجیت سنگھ چندرپال, انہوں نے کہا جی کہ باجی جو ہے یہ اس کو اس نے سکھوں کو خالصتانی کہا ہے, سکھوں کو جو فارمرز تھے ان کو, اور ان کے جو ہے ہرٹ کیے ہیں فیلنگز. تو اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ ایف آئی آر اس کے اوپر اور چارج شیٹ ایک جو بنانی چاہیے, بلکہ 6 مہینے کے اندر اس پہ ٹرائل چل کے اس کے اوپر جو ہے مقدمہ چل کے اس کو سزا دینی چاہیے, کیونکہ یہ بہت ہی اینٹی نیشنل باتیں کرتی ہے, ہمیں سکھوں کو بیڈ لائٹ میں پورٹری کرتی ہے. تو اس کے اوپر جی بڑا ہنس کے کنگنا رناوت نے کہا ہا ہا ہا, آئی ایم دا موسٹ پاورفل وومن ان انڈیا. تو انہوں نے جی یہ ہنسی میں بات اڑا دی. کومیڈین کنال کامرا جو ہیں جی, ان کا جو شوز کچھ ہونے والے تھے بنگلورو کے اندر, وہ سارے کینسل کر دیے گئے ہیں, اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ انتہائی اینٹی انڈین ہے ان کی کامیڈی, اور یہ لوگوں کی فیلنگز کو ہرٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے کچھ دن پہلے ہی جو ہے کامیڈین منور فاروقی, ان کو بھی پرفارم کرنے کی اجازت نہیں دی تھی. تو آج بی جے پی کی گورنمنٹ کے اوپر یہ بڑا اعتراض کرتے ہیں, تو آج ایک دفعہ پھر سینٹر کی گورنمنٹ کو کھینچتے ہوئے انہوں نے کہا, ہیلو بنگلور پیپل, ہیپی ٹو انفارم یو آل مائی شوز ٹو بی ہیلڈ ان دا نیکسٹ 20 ڈیز ہیو بین کینسلڈ, بٹ ایٹ لیسٹ آئی ایم ہیپی دیٹ دا رولنگ کلاس از ٹرائنگ ناٹ ٹرائنگ ٹو اپریس, and they if they are oppressing at all they are oppressing with equality. فاروقی کا بھی کینسل کیا اور میرا بھی کیا. بنگلہ دیش کی کرکٹ جو ہے جی, اس نے اب اناؤنس کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو سیکنڈ ٹیسٹ میچ ہونے والا ہے اس میں شکیب الحسن جو کہ اب فٹ ہیں وہ آئیں گے, اور اس کی انٹری کو بڑا ہی امپورٹنٹ سمجھا جا رہا ہے. یہ December 4 کو جو ہے یہ سیکنڈ ٹیسٹ پاکستان اور بنگلہ دیش کا ہوئے گا, کیونکہ یہ بڑے زبردست بیٹس مین ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے بنگلہ دیش نے تسکین احمد اور بیٹر محمد نعیم کو بھی انکلوڈ کیا ہے, لیکن پاکستان 2 ٹیسٹ کی سیریز آلریڈی 1-0 سے ٹریل کر رہا ہے. خلیج ٹائمز کی رپورٹ ہے جی, آئی تو ویسے یہ کل تھی, میں نے مس کر دی, مگر خلیج ٹائمز کی یہ بڑی زبردست رپورٹ ہے, اور اس کے مطابق پاکستان کے جو باکسر ہیں جناب محمد وسیم, انہوں نے دبئی کے اندر یہ جو میچز چل رہے تھے اس کو کوالیفائی کیا ہے فار WBA اینڈ WBC ورلڈ ٹائٹل, اور جیتنے کے بعد یہ بڑے خوش تھے. اور انہوں نے بڑا ہی ٹف چیلنج دیا تھا کولمبیا کے رابر بریرا تھے, اور اس میں وہ جو ہیوج سٹارز بیٹھے ہوئے تھے اس کراؤڈ میں دبئی میں, وہاں پہ ہیوی ویٹ باکسنگ سٹار اینتھنی جوشوا اور یو ایس سنگر ولیم آئی ایم اور اس طرح کے اور بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ دگج قسم کے سیلیبریٹیز بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کے سامنے جی انہوں نے جیتا. اس کے علاوہ جی پاکستان نے ایشین سکوش چیمپئن شپ جو کوالالمپور میں چل رہی ہے اس میں بھی فلپینز اور انڈونیزیا جو ہے ان کو ہرایا ہے. اور جناب ثانیہ مرزا صاحبہ جو ہیں وہ سپورٹس بورڈ پنجاب ٹینس स्टेडियम जो निश्तर पार्क में है उसमें उन्होंने विजिट किया और वहां पे जो है पाकिस्तानी प्लेयर्स असामुल हक और अकील खान के साथ टेनिस खेली और फैसिलिटीज की बड़ी तारीफ की और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में फ्यूचर में टेनिस के बहुत अच्छे स्टार्स पैदा हो सकते हैं। कनेडा बेचारी जो है हमारी कनेडा की जूनियर विमेन्स हॉकी टीम जो फनस गई थी साउथ अफ्रीका में, ये अंडर 21 टीम है, इसके बारे में आज फील्ड हॉकी कनाडा ने कहा जी कि अब ये नेक्स्ट वेंसडे को आ रही है साउथ अफ्रीका से। एंड एब्सोल्यूटली आवर लास्ट न्यूज इज कि जी कतर जो है फीफा अरब कप जो हो रहे हैं टूर्नामेंट्स उसमें उन्होंने बहरेन से वो जीते हैं। इसके अलावा यूएई ने सीरिया को 2-1 से हराया है, टूनिजिया ने मोरिटानिया को 5-1 से हराया है, इराक और ओमान ने 1-1 से जो हैं ये ड्रॉ किए हैं कॉम्पिटिशंस।
ये थी हमारी न्यूज एंड शादी जी थैंक यू सो मच।
थैंक यू मच भाई,
इंशाल्लाह कल 4 बजे हम फिर दोबारा आएंगे आपके साथ पूरी पूरी खबरें लेके। फिलहाल टाइम बस इतनी इजाजत देता है कि आपसे अल्लाह हाफिज कहा जाए तो क्या कहें, अल्लाह हाफिज जी।
TOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
इलाही मैं तुझसे दुआ मांग जला दे जो इस आग को मेरे मौला बुझा दे मैं ऐसे करम की हवा
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। रेडियो 770 AM वॉइस ऑफ कम्युनिटी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट eawaz.com।
मानी मेरी हद से भी आगे ये गुजर ही गया, खुद भी परेशान हुआ, मुझको लिए कर गया। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर